अमित ने तारापरी को अपने पास लेकर आने के लिए एक काली शक्ति छिपकली को अपने पास बुलाया था और उसे अपनी सारी बात समझा दी थी। वहीं अमन और मान के दिल में ये तारापरी को लेकर सवाल पैदा हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कहीं तारा कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं, इसलिए उन्होंने तारापरी का सच अपनी तरीके से जानने का इरादा किया और अमन ने मान को एक भयानक सांप बनाकर तारापरी के पास बैठा दिया था। वहीं मलिका अमित को यकीन दिलाने में लगी थी कि वो अब उसकी है और उसके सिवा वो अब किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। मलिका, अमित, अब मुझे समझ में आ चुका है, उस जिन अमन के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं आपके दिल की मलिका बनकर रहूं। इतना कहकर मलिका अमन के सीने जा लगी और अमन उसे अपने इतने करीब पाकर अपने होश खो बैठा था। और न्यूट तो वो थी ही, सो उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और वो एक बार फिर मलिका के हुस्न में डूब चुका था। अमित जब जब मलिका के पास जाता तब तब उसे एहसास होता कि आज ये कल से बेहतर है। जैसे जैसे अमित मलिका को किस कर रहा था वैसे वैसे मलिका ने भी अपनी तेजी बढ़ा दी थी और वो इस बार निढाल सी होकर नहीं पड़ी रही थी, बल्कि अमित से ज्यादा वो अमित को प्यार कर रही थी। अगर अमित उसकी नेक को चूमता तो वो अमित के कंधों को चूमती, और जैसे जैसे मलिका अमित को चूम रही थी अमित उतना ही ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ उसने जबरदस्ती की थी वो उन्हें चूमना, उनके साथ सब कुछ वो अकेला ही करता था। लड़कियां तो बस निढाल सी होकर एक ओर पड़ी रहती थीं। लेकिन आज जब मलिका ने उसे बदले में प्यार किया तो उसका जिस्म एकदम सुन हो चुका था और उसके दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जहां अमित उस पर भारी होता था। लेकिन आज मलिका उस पर हावी हो चुकी थी और वो उसके नीचे से निकलकर उसके पेट पर जा बैठी थी और उसकी चेस्ट की अपनी टोंग से लिक करने लगी थी। अमित अपनी आंखें बंद करके आहें भर रहा था। उसे लग रहा था अगर किसी भी चीज में कहीं सुख है तो वो यही है, यही है। मलिका अमित की बंद हुई आंखें देख रही थी। मलिका समझ चुकी थी कि अमित उसके प्यार के नशे में पूरी तरह से डूब चुका था। अमन के साथ वो केवल एक रात ही बिताना चाहती थी ताकि वो उसकी औलाद को जन्म देकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। लेकिन अभी वो अमित को धोखा नहीं दे सकती थी क्योंकि अमित काली शक्तियों का मालिक था। उसके अंदर जितनी भी दुनिया की काली शक्तियां थी, चाहे वो सांप हों या बिच्छू या छिपकली, सब मखलूक उसके अंडर में थीं। काली शक्तियों के गुरुजी जो काली पहाड़ी पर विराजमान थे, बहुत समय पहले उन्होंने ही अमित को इस काम के लिए चुना था। अमित के अंदर की महत्वाकांक्षा देखकर वो समझ चुके थे कि अमित जैसा लालची आदमी ही वो तिलस्मी पत्थर सफेद जिन से ला सकता था, क्योंकि अमित का लालच कभी नहीं भरने वाला था। उसके गुरुजी ने उसे बेहिसाब शक्तियां दी थीं, लेकिन अमित को हौर पाने की चाह थी, इसीलिए वो अब तिलस्मी पत्थर के पीछे था। तिलस्मी पत्थर के द्वारा वो अपने गुरुजी को आज़ाद करने के साथ साथ उस काले दरखत पर जितनी भी काली शक्तियों की आत्मा थी वो उन्हें भी आज़ाद कराकर अपने वश में करना चाहता था। वेल, मलिका ने सोच लिया था कि अब वो अमित के साथ ही रहेगी, और रही बात अमन की, तो अगर उसके पास शक्तियां होगी तो अमन के साथ तो वो कभी भी एक रात गुजार सकती थी और उसका अंश अपने पेट में रख सकती थी। मलिका के मन में भी अब शक्तियों का लालच जन्म ले चुका था। उसने सोच लिया था अगर असीमित शक्तियां उसके पास होगी तो फिर अमन तो क्या, वो जिसे चाहेगी अपने काबू में कर लेगी। यही सोचकर वो आज अमित को अपने वश में करने जा रही थी। वेल, अमित की कितनी देर तक इसी तरह से किस करने के बाद मलिका ने उसकी नेक पर अपनी पकड़ जमा ली थी। कुछ देर उसकी नेक को किस करने के बाद अमित बेकाबू हो चुका था और उसने मलिका के बाल पकड़कर उसे अपने नीचे लिटा लिया और वो भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा था। और एक दूसरे को इस तरह से प्यार करते करते वो दोनों एक हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अमन के इशारे पर मान नागरूप में सोती हुई तारापरी के पास जा पहुंचा था और वो उसकी बिल्कुल बराबर में जाकर लेट गया था और अपने बड़े से फने से जोर जोर से श करके सांस लेने लगा था। उसकी तेज सांसें तारापरी के बालों पर पड़ रही थीं और उसके कुछ बाल उड़कर तारापरी के मुंह पर आ गए थे और वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। मान भले ही नागरूप में था लेकिन उसे पूरा एहसास था कि वो उस वक्त तारा के कितने करीब था और उसके दिल में प्यार के गिटार बजने लगे थे। अमन उसे इस तरह से तारा को देखता हुआ देख चुका था और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा था, आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो और डराओ उसको। लेकिन तभी मान भी उसे इशारों ही इशारों में बोला, कैसे डराऊं मैं इसको, कितनी प्यारी लग रही है ये सोती हुई, मेरा दिल कर रहा है पूरी रात इसके पास ऐसे ही बैठे हुए तारा को सोता हुआ देखता रहूं। अमन का पारा पर्दे के पीछे छुपे हुए हाई हो गया था और उसने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तूने 5 मिनट के अंदर अंदर इसे नहीं डराया तो मैं तुझे हमेशा के लिए नागी बना रहने दूंगा और तुझे वापस इंसानी रूप नहीं दूंगा। तब मान, अरे नहीं 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 भाई, आप तो बुरा मान गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप देखिए मैं इसको कैसे डराता हूँ। ऐसा कहकर अमन ने अपना फना तारापरी के मुंह के पास ले गया और तारापरी नींद में अपने पास किसी सॉफ्ट सी चीज का एहसास पाकर उसने करवट ली और अमन के बड़े से फन पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपने और करीब ले आई। अब मान का फन तारापरी के खूबसूरत चेस्ट के बीचों बीच था। मान जो कि नाग रूप में था वो तो अपनी सांस लेनी भूल चुका था। तारापरी के जिस्म की खुशबू उसे पागल कर रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाया और नाग रूप में ही अपनी जीभ निकालकर उसे चाटने लगा था। तारापरी को नींद में कुछ गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी, लेकिन वो उस वक्त गहरी नींद में थी, इसलिए वो मान को और टाइट करते हुए पकड़कर सो गई थी। तारापरी को लग रहा था कि ये नर्म सी चीज कोई तकिया है। उसके पास उसे एहसास नहीं था कि कितना मोटा और भयानक सांप उस वक्त उसकी बाहों में था। तब अमन ने मान को घूरना शुरू कर दिया था। मान अमन का घूरना महसूस कर चुका था और वो अपनी श की आवाज ही अमन से बोला था, भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मुझे ऐसे गले लगा रही है मानो मैं कोई भयानक सांप नहीं बल्कि एक क्यूट सा सॉफ्ट सा टेडी हूँ। अमन जस्ट शट अप और बकवास बंद कर अपनी और मुझे कुछ सोचने दे। तब अमन ने इधर उधर देखा और उसे तारापरी के साइड टेबल पर एक पानी का ग्लास रखा नजर आया। तब अमन ने कुछ सोचा और मान को इशारा किया कि वो अपनी बड़ी सी पूंछ से वो ग्लास नीचे गिरा दे। मान सकपकासा गया और बोला, भाई क्या थोड़ी देर और में। अब इससे पहले कि मान कुछ कहता अमन बोला, जितना बोला उतना कर वरना मैं तुझे सांप बना हुआ ही छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा।
तब मान, नहीं नहीं भाई अभी मत जाना, मैं कर रहा हूँ। सच में तुम जल रहे हो मुझे तारा के इतने करीब देखकर, मान ने फुंकारते हुए कहा और अपनी पूंछ लहराकर वो ग्लास नीचे गिरा दिया। ग्लास के गिरते ही एक जोरदार शोर वहां हो गया था। तब अचानक ये शोर सुनकर तारापरी की आंख खुल गई थी और वो सांप बने मान को छोड़कर एक झटके से उठ बैठी थी और उसने अपनी बराबर में नहीं देखा, उसने नीचे गिरे हुए ग्लास की ओर देखा था और बोली, ये ग्लास कैसे गिर गया, लगता है सोते वक्त मेरा हाथ इस पर लग गया होगा। तारापरी ने खुद से ही सवाल जवाब किया और एक उसी ओर बिना दूसरी साइड देखे अपनी पीठ सांप बने मान की ओर करके वो एक बार फिर सो गई। अमन और मान दोनों झुंझला गए। तब अमन जब वो उठकर बैठी थी तो तब अपनी इस नाग वाली आवाज में श, 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 नहीं बोला सकता था तू। तब मान, मुझे क्या पता था वो इस ओर देखेगी ही नहीं और मेरी पीठ फेर कर सो जाएगी, इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम मेरी ओर तो मुंह करके मुझे बाहों में भरकर तो लेटी थी, मान ने अपना फन वाला मुंह बनाते हुए कहा था। अमन उसकी बात सुनकर और चिढ़ता जा रहा था, वो पर्दे के पीछे खड़ा खड़ा किलस रहा था। मान उसे गुस्से में देखकर सोचने लगा, भाई को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, कहीं गुस्से में मुझे सांप बना छोड़कर चले गए तो। नहीं नहीं, मैं सांप की बॉडी में ज्यादा देर सांस नहीं ले सकता हूँ। तब मान ने अपनी तरफ तारापरी की पीठ को देखा और कुछ सोचकर वो उसकी पीठ को अपनी पूंछ से सहलाने लगा और थोड़ा सा कड़ा मन करके उसने तारापरी की पीठ पर अपनी पूंछ थोड़ा तेज से मारी। मान ने अपनी पूंछ मारी तो थोड़ी हल्की थी, लेकिन उस वक्त वो एक भारी भरकम सांप था जिसका हल्का भी बहुत ज्यादा हो गया था और तारापरी एक झटके से बैठ के नीचे गिर पड़ी थी और गिरते ही उसकी एक चीख निकल गई थी और वो दर्द में कराहती हुई थी। तभी उसकी नजर श करते हुए सांप पर पड़ी थी। तारापरी उसे देखकर एकदम से हैरान रह गई थी और डर के मारे पीछे हटने लगी थी। तारापरी का मन किया कि वो अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करें और अपने आप को एक रक्षा कवच में बंद कर लें। कुछ सोचकर उसने आंखें बंद कर ली।